जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वन चारी, यमुना तीर वन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रामय की जय। श्रीमद भगवद गीता की जय। निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भगवद गीता दसवां अध्याय श्री भगवान का ऐश्वर्य श्लोक संख्या 32 सर्गाणां आदिः अन्तः च मध्यं च एव अहम् अर्जुन अध्यात्मा विद्या विद्यानां वादः प्रवदताम् अहम् सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम् सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम् सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम् सर्गाणामादिरन्तश्च अर्जुन विद्यानां प्रवदतामहम् सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम् माताजि सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम् सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम् सर्गाणां संपूर्ण सृष्टियों का आदि ही प्रारंभ अंतः अंत च तथा मध्यम मध्य च भी एव निश्चय ही अहम् मैं हूँ अर्जुन हे अर्जुन अध्यात्म विद्या अध्यात्म ज्ञान विद्यानाम विद्याओं में वादः स्वाभाविक निर्णय प्रवदताम तर्कों में अहम् मैं हूँ अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि, मध्य और अंत हूं। मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूं और तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूं। तात्पर्य। सृष्टियों में सर्वप्रथम समस्त भौतिक तत्वों की सृष्टि की जाती है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, यह दृश्य जगत महाविष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु तथा क्षीरोदकशायी विष्णु द्वारा उत्पन्न और संचालित है। बाद में इसका संहार शिवजी द्वारा किया जाता है। ब्रह्मा गौण सृष्टा हैं। सृजन, पालन तथा संहार करने वाले ये सारे अधिकारी परमेश्वर के भौतिक गुणों के अवतार हैं। अतः वे ही समस्त सृष्टि के आदि, मध्य तथा अंत हैं। उच्च विद्या के लिए ज्ञान के अनेक ग्रंथ हैं, यथा चारों वेद, उनके छहों वेदांग, वेदांत सूत्र, तर्क ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, पुराण। इस प्रकार कुल 14 प्रकार के ग्रंथ हैं। इनमें से अध्यात्म विद्या संबंधी ग्रंथ, विशेष रूप से वेदांत सूत्र, कृष्ण का स्वरूप है। तर्क शास्त्रियों में विभिन्न प्रकार के तर्क होते रहते हैं। प्रमाण द्वारा तर्क की पुष्टि, जिससे विपक्ष का भी समर्थन हो, जल्प कहलाता है। प्रतिद्वंद्वी को हराने का प्रयास मात्र वितंडा है, किंतु वास्तविक निर्णय वाद कहलाता है। यह निर्णयात्मक सत्य कृष्ण का स्वरूप है। अनुवाद को दोहराइए। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि, मध्य और अंत हूं। मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूं और तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूं। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे, वांछा कल्पतरुभ्यश्च सिंधुभ्य एव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। आप सबसे हम एक प्रश्न पूछेंगे अभी। आप में से कितने भक्तों ने आज तक किसी के साथ कोई वाद किया है या बहस किया है या तर्क किया है, हाथ ऊपर कीजिए ईमानदारी से। आप में से कितने भक्तों ने किसी के साथ भी कोई वाद किया है, तर्क किया है, बहस किया है, हाथ ऊपर। कितने भक्तों ने किसी के साथ भी कोई वाद नहीं किया, कोई तर्क नहीं, कोई बहस नहीं किया, हाथ ऊपर कीजिए। एक भी हाथ नहीं ऊपर। तो आप में से कितने भक्तों को अनुभव है कि तरह तरह के वाद होते हैं, थोड़े वाद जल्दी से मिट जाते हैं, थोड़े ऐसे वाद हैं जिनका कोई अंत ही नहीं लगता, थोड़े ऐसे वाद हैं या तर्क हैं कहना चाहिए जिनका कोई अच्छा निष्कर्ष निकलता है, थोड़े ऐसे तर्क हैं जिनका निष्कर्ष अच्छा नहीं निकलता है, केवल गर्मी ज्यादा होती है, प्रकाश नहीं होता है उस तर्क में। ऐसे भी अनुभव है आपको कि अलग अलग तरह के वाद आप में किए होंगे या तर्क किए होंगे अन्यों के साथ। तो तरह तरह के चर्चाएं होती हैं, चर्चाओं के बिना तो हम रह नहीं सकते ना जीवन में। आप क्या अकेले जीवन में बैठ सकते हैं कहीं? जब आप किसी के साथ बातचीत करेंगे किसी न किसी विषय पर चर्चा होगी। बारिश इतनी क्यों आ रही है, इतना बाढ़ क्यों आ गया है, पानी यहां वहां क्यों फैल गया है, कोई कहेगा नहीं ये कारण है, कोई कहेगा ये कारण है, वहां जो अलमत्ती बंधार उसको खोला नहीं गया था, कोई कहेगा यहां किसी ने पानी ज्यादा भर दिया था, कोई है। तो तरह तरह के कारण होते हैं। अब पूर्ण सत्य क्या है इसको समझना भी इतना आसान नहीं होता है। फिर भी चर्चाओं के बिना तो हम रह नहीं सकते। चर्चाओं की कोई लाभ होनी चाहिए। चर्चाओं का लाभ नहीं होगा तो फिर क्या फायदा? केवल हमारा समय यदि व्यर्थ चले जाए तो इसमें समय की बर्बादी हम सबके लिए है। यहां इस श्लोक में श्री कृष्ण कह रहे हैं कि समस्त सृष्टियों के आदि मध्य और अंत वही हैं। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं कि इसका मतलब ये है कि सृष्टि के उद्गम भगवान श्री कृष्ण के कारण होता है, श्री कृष्ण सृष्टि का संहार भी कृष्ण के कारण होता है और सृष्टि का पालन भी श्री कृष्ण के द्वारा ही होता है। भगवान के दूत होते हैं, उनके प्रतिनिधि होते हैं, उनके अवतार होते हैं जो इन सर्व कार्यों को संपन्न करते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण कहते हैं कि जितने भी विद्याएं हैं, विद्यानाम, समस्त प्रकार के विद्याओं में से अध्यात्म विद्या, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, वो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है और वो स्वयं है। समस्त प्रकार के विद्याओं में से सर्वश्रेष्ठ अध्यात्म विद्या है और वो स्वयं अध्यात्म विद्या है। तो ये जो एक जानकारी है कि संपूर्ण सृष्टियों के आदि मध्य और अंत श्री कृष्ण ही हैं और संपूर्ण जितने भी प्रकार की विद्याएं हैं उनमें से भी सर्वश्रेष्ठ अध्यात्म विद्या है, इस ज्ञान पर आधारित जब हम चर्चाएं करेंगे और सही ढंग से चर्चाएं करेंगे तो फिर इसका निष्कर्ष बहुत ही मंगलमय होगा, हितकारी होगा, लाभदायक होगा, सुखप्रद होगा सबके लिए। न्याय शास्त्र में बताया जाता है कि चार प्रकार की चर्चाएं होती हैं। एक प्रकार की चर्चा है जो सबसे श्रेष्ठ है, इसको संवाद कहते हैं। अभी साधारण भाषा में हम संवाद शब्द का प्रयोग करते हैं परंतु एक विशेष अर्थ है संवाद का न्याय शास्त्रों के अनुसार, सम्यक वाद है। वाद अर्थात चर्चा, सम्यक अर्थात जो परिपूर्ण चर्चा है। ये परिपूर्ण चर्चा दो व्यक्तियों के बीच में होती है, जो एक तत्वज्ञानी है और दूसरे जो तत्व को जानना चाहते हैं। जैसा कि भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। हमें चाहिए कि हम ऐसे एक तत्वज्ञानी व्यक्ति के पास जाएं जिन्होंने कि तत्व का दर्शन किया है या जिनको तत्व का साक्षात्कार है, और उनसे हम तत्व की जिज्ञासा करें। क्योंकि उन्हें साक्षात्कार हुआ है, वो हमें सही ज्ञान दिला सकते हैं, तो ऐसे उनकी सेवा करनी चाहिए, उनसे जिज्ञासा करनी चाहिए, तो इसमें हमारा भला होगा, हम भी सत्य को जान पाएंगे। तो वेदांत सूत्र में भी कहा गया है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म विद्या अध्यात्म विद्या के बारे में हमें जिज्ञासा करनी चाहिए। केवल फिजूल की बातों की चर्चाएं और प्रश्न उत्तर नहीं करने चाहिए। अध्यात्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो आवश्यक है, ऐसे हमें प्रश्न करने चाहिए। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। तो ये संवाद जो होता है दो ऐसे व्यक्तियों के बीच में होता है, जिसमें एक श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं और एक दूसरे जो होते हैं वो अपने आप को उतना श्रेष्ठ नहीं मानते हैं। तो वो एक श्रेष्ठ व्यक्ति से प्रश्नोत्तर के द्वारा ज्ञान, सत्य के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसे सद्धर्म परीक्षा कहते हैं, सद्धर्म के बारे में परीक्षा या जिज्ञासा करना। तो ये परिपूर्ण या आदर्श चर्चा है, जिसमें प्रकाश होता है, गर्मी नहीं होती है। प्रकाश के किरणों के द्वारा जो व्यक्ति प्रश्न करता है, उसका मन ज्ञान से प्रकाशित होता है, सही ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे, और उसका जीवन सुधर जाता है और परिपूर्णता की प्राप्ति भी वो व्यक्ति कर सकता है। तो ऐसे संवाद के कोई उदाहरण आप दे सकते हैं? हाँ, महाप्रभु केशव कश्यप, महाप्रभु और रामानंद राय, इसे राय रामानंद संवाद कहते हैं, संवाद। रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु ने बहुत महत्वपूर्ण आध्यात्मिक विषयों के ऊपर चर्चा की थी। इस ग्रंथ का नाम क्या है? भगवद गीता। ये भी एक संवाद है। जब गीता का पाठ करते हैं तो हरेक अध्याय के अंत में हम क्या बोलते हैं? ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे। और पहले अध्याय के बाद क्या बोलते हैं? अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथम अध्याय। परंतु उसके पहले क्या कहते हैं? श्री कृष्णार्जुन संवादे। अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथम अध्याय। तो ये जो ब्रह्म विद्या का शास्त्र है भगवद गीता, जो कि श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद है, इसके पहले अध्याय प्रथम अध्याय है अर्जुन विषाद योग, इसका प्रथम अध्याय का नाम है। विषाद अर्थात जब उदासीपन या दुख। तो अर्जुन हम देखते हैं भगवद गीता के पहले अध्याय में बहुत दुखी थे, बहुत उदास थे, तो इसका वर्णन पहले अध्याय में पाया जाता है, इसलिए इसका नाम है अर्जुन विषाद योग। तो ऐसे महत्वपूर्ण बात क्या है? श्री कृष्ण अर्जुन संवाद। तो ये एक आदर्श संवाद है, जिसमें आदर्श प्रश्न पूछे जाते हैं और आदर्श उत्तर प्राप्त होते हैं, पूछने वाला व्यक्ति भी सही होता है, उत्तर देने वाला व्यक्ति भी सही होता है। इसमें सही तरह से अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं, अच्छे उत्तर दिए जाते हैं। यदि दोनों में से एक भी सही नहीं हो तो यह संवाद नहीं होता। पूछने वाला व्यक्ति किसी भी तरह के प्रश्न पूछ रहा है, कैसे भी पूछ रहा है, बिना सोचे समझे कि कैसे प्रश्न पूछे जाने चाहिए, सामने वाले व्यक्ति के सामने आकर किस तरह से हमारा बर्ताव होना चाहिए, बोलचाल कैसी होनी चाहिए, इसका विचार न करते हुए कैसे भी प्रश्न पूछ लेता है। और प्रश्न भी ऐसे होते हैं जिनके कोई मायने नहीं है, तो फिर यह संवाद नहीं होगा। सामने वाला व्यक्ति भले कितने ही योग्य क्यों न हो, परंतु पूछने वाला व्यक्ति यदि योग्य न हो तो फिर यह संवाद नहीं होगा। दूसरी ओर पूछने वाला व्यक्ति बहुत गंभीर है, बहुत उत्सुक है सत्य जानने के लिए, परंतु सही व्यक्ति से वो प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, और वो व्यक्ति जो कि उत्तर दे रहा है वो यहां वहां के अपने मानसिक चिंतन से कैसे भी प्रश्नों का उत्तर दे दे, तो फिर ये भी संवाद नहीं होता। तो प्रश्न करने वाला अर्जुन की तरह चाहिए और प्रश्नों के उत्तर देने वाले श्री कृष्ण के समान चाहिए। तो भगवद गीता ये एक संवाद है, श्रीमद् भागवत ये एक संवाद है, किनके बीच में? सुखदेव गोस्वामी और महाराज परीक्षित के बीच में एक संवाद है। नैमिषारण्य में इकट्ठे हुए ऋषियों के बीच में और सुत गोस्वामी के बीच में एक संवाद है। इसमें अनेक संवादों का वर्णन पाया जाता है, जैसे वसुदेव और नारद मुनि के बीच में संवाद, विदुर और मैत्रेय मुनि के बीच में संवाद, युधिष्ठिर महाराज और नारद मुनि के बीच में संवाद, ऐसे कई संवाद हैं। जितने भी उपनिषद हैं, पुराण हैं, उनमें ऐसे कई संवाद पाए जाते हैं, संपूर्ण या सम्यक वाद। तो ऐसी जो चर्चाएं हैं वो आदर्श चर्चाएं हैं, ऐसी चर्चाएं होनी चाहिए, ऐसी चर्चाओं से हमारा भला होगा, सारे जगत का भला होगा। और ऐसे भी और तीन प्रकार की चर्चाएं होती हैं जो लगभग समान स्तर पर स्थित होने वाले व्यक्तियों के बीच में होते हैं। जो संवाद है वो समान स्तर के व्यक्तियों में नहीं होता है, उनमें से एक व्यक्ति श्रेष्ठ स्तर के होते हैं, जो उत्तर देते हैं, जो योग्य होते हैं, जो काबिल होते हैं। परंतु अन्य जो तीन तरह के चर्चाएं हैं उनमें बातचीत करने वाले लोग बराबर के होते हैं लगभग। उनमें से ये तीन हैं, कौन से हैं? एक को कहते हैं वाद, दूसरा है जल्प और तीसरा है वितंडा, जिसकी चर्चा यहां पर श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंत में करते हैं। तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं इस तात्पर्य के इस भाग को पुनः सुन लेते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, तर्क शास्त्रियों में विभिन्न प्रकार के तर्क रहते हैं। प्रमाण द्वारा तर्क की पुष्टि जिससे विपक्ष का भी समर्थन हो जल्प कहलाता है। प्रतिद्वंद्वी को हराने का प्रयास मात्र वितंडा है, किंतु वास्तविक निर्णय वाद कहलाता है। यह निर्णयात्मक सत्य कृष्ण का स्वरूप है। तो वाद क्या होता है? वाद का मतलब है जब दो व्यक्ति आमने सामने बैठते हैं और चर्चाएं करते हैं, एक व्यक्ति अपना मत रखता है सामने, इसको पक्ष कहते हैं, और जो सामने वाले का मत है वो पूर्व पक्ष है। तो पक्ष और पूर्व पक्ष के बीच में चर्चा होती है। एक व्यक्ति अपने मत को सामने रखता है, परंतु किस आधार पर सामने रखता है? कोई तो प्रमाण होना चाहिए, कोई सबूत होना चाहिए, कोई उसमें एक न्याय होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मनमाने ढंग से कोई बात कह दे, कोई प्रमाण नहीं रखा, ऐसे ही आसमान से कोई बात निकाली, कुछ कह दिया, ऐसे नहीं। सही तरह से अपने बातों को प्रमाणित करना चाहिए और फिर सही तरह से अपने तर्क को आगे बढ़ाना चाहिए, एक के बाद एक के बाद एक। तो जब ये पक्ष अपने रखते हैं तो पूर्व पक्ष के जो व्यक्ति हैं वो अपना मत रखेंगे सामने, और इस तरह से दोनों के बीच में चर्चा होती है। और जब ये चर्चा का कोई निष्कर्ष पहुंचता है, अच्छा निष्कर्ष, तो फिर जिसका निष्कर्ष, जिसका वाद या जिसका जो पक्ष है वो सही निकला, फिर वो विजयी माना जाता है और फिर ये सही निष्कर्ष पहुंच जाता है। तो ऐसी चर्चा जब होती है तो इसमें दोनों प्रतिद्वंद्वियों का उद्देश्य होता है सत्य की स्थापना करना, सत्य का खोज जो है ये प्रमुख उद्देश्य होता है। तो दोनों अपने आप में जो चर्चा कर रहे होते हैं वो गंभीर होते हैं, केवल झगड़े के लिए नहीं आए हुए होते हैं। दोनों जानना चाहते हैं कि सही बात क्या है, सत्य क्या है। ऐसे वैदिक काल में, और वैदिक काल की बात ही नहीं बल्कि 400-500 साल पहले तक भी ऐसे वाद हुआ करते थे, प्रतियोगिताएं स्पर्धाएं हुआ करती थी, बड़े बड़े विद्वान लोग आके बैठते थे, आमने सामने चर्चा करते थे। जैसे एक बहुत प्रसिद्ध एक वाद हुआ आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच में। आदि शंकराचार्य ने तो अद्वैतवाद की स्थापना की, परंतु वैष्णव संप्रदाय की मान्यता है कि वास्तव में आदि शंकराचार्य एक वैष्णव ही हैं, एक गुप्त रूप में वो आए हैं भगवान की किसी एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए। तो खैर, उनका मुख्य उद्देश्य था वेदों की स्थापना करना। तो वो यहां वहां भ्रमण कर रहे थे, मंडन मिश्र नाम के बहुत बड़े विद्वान थे। तो दोनों के बीच में वाद हुआ, और ऐसे वाद के कोई नियम भी होते थे, मनमाने ढंग से नहीं हो सकता था कि एक चिल्लाए, दूसरा चिल्लाए, दूसरे और ज्यादा चिल्लाए, ऐसे नहीं। और बीच में कोई ऐसे मध्यस्थ होते थे जो भी बड़े विद्वान होते थे, और वो फिर तय करते थे कि विजय किसका हुआ है, किन किनकी बात सही है वास्तव में। तो उस समय उस वाद में मंडन मिश्र की पत्नी जो है वो मध्यस्थ बन गई। देखिए अद्भुत बात है ना। अब मंडन मिश्र की पत्नी, वो भी उन बहुत बड़ी विद्वान थी, तो बन गई। अंततः विजय आदि शंकराचार्य का हो गया और फिर मंडन मिश्र उनके शिष्य बन गए। तो ये वाद है। जब वाद करते, भले शंकराचार्य ने जिस सिद्धांत को सामने रखा था उससे हम भली भांति सहमत है नहीं है वो अलग बात है, परंतु ये एक प्रक्रिया की बात है, एक पद्धति की बात है। जिस तरह से और जिस भावना से दोनों प्रतिद्वंद्वी आमने सामने आते थे और जिस तरह से चर्चा होती थी उसका उल्लेख हो रहा है, तो इसको वाद कहते हैं। अभी सही वाद वो है जो गुरु साधु शास्त्र इनके अनुसार कोई सिद्धांत हो, कोई ज्ञान हो, उसकी स्थापना जिसके द्वारा हो वो वाद है। तो सही सिद्धांत, सही निष्कर्ष की स्थापना करना, इसको वाद कहते हैं। इसलिए इस श्लोक में भी भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, वाद प्रवदतामहम, प्रवदताम अह अर्थात तर्क। तो समस्त प्रकार के तर्कों में से वाद मैं हूं, भगवान कृष्ण कहते हैं। अर्थात जितने भी तरह तरह के तर्क और बहस चलते रहते हैं मनुष्यों के बीच में, उनमें से मैं उस प्रकार का मैं जो तर्क हूं जिसमें सही निर्णय पर दोनों प्रतिद्वंद्वी पहुंचते हैं, जिसमें सत्य की स्थापना होती है। और सत्य क्या है, जो शास्त्रों के अनुसार है, गुरु साधु शास्त्र। तो यहां पर प्रभुपाद जी कहते हैं वास्तविक निर्णय वाद कहलाता है। तो कोई निष्कर्ष निर्णय होना चाहिए, ऐसा निर्णय जो कि शास्त्रों के आधार पर है। यह निर्णयात्मक सत्य कृष्ण का स्वरूप है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण और शास्त्र में, उनके वेद शास्त्र में कोई अंतर नहीं है। भगवान के वेद वाणी भगवान से अभिन्न है, भगवान से श्वास से निकलती है ये वेद वाणी। तो ये है वाद। और फिर है जल्प। जल्प क्या है? जब दो व्यक्ति आमने सामने मिलते हैं और दोनों का उद्देश्य ये नहीं होता है कि सत्य की स्थापना कैसी हो, दोनों का उद्देश्य क्या होता है? सामने वाले को हराए कैसे, सामने वाले को गलत कैसे साबित करें, मैं सही सामने वाला गलत। तो दोनों के बीच में जोरदार धुआंसा घमासान युद्ध जैसे बहस होने लगेगा। नहीं नहीं ऐसे है, वो कहेगा नहीं नहीं ऐसे है। तो दोनों अपनी बात को आगे रखेंगे, कभी कभी सामने वाले की बात ठीक से सुनेंगे भी नहीं, केवल अपनी बात आगे रखेंगे और मैं ही सही हूं। और फिर यदि किसी बात का उत्तर हम जान नहीं पाए सामने वाले से, तो पीछे जाके और हमारे जो गोलियां बंदूक सब लेके आएंगे, अर्थात तर्क की दृष्टि से, फिर और हम हमारे तर्क को लेके आएंगे सामने और मजबूत तरह से अपने पक्ष को सामने रखने का प्रयास करेंगे, सामने वाला भी वैसे ही करेगा। इस तरह से कुछ सही या मंगलमय निर्णय नहीं निकलेगा इसमें से। प्रभुपाद जी वो कहा करते थे, एक छोटी सी कहानी जो आपने सुनी होगी कई बार, कैंची वाले और छुरी वाले की। एक बार दो व्यक्तियों के बीच में तर्क हो गया किसी बात के ऊपर, तो एक व्यक्ति ने कहा कि इसका उत्तर है छुरी, दूसरे ने कहा नहीं छुरी नहीं कैंची। तो छुरी कैंची चलता रहा। आखिर में जो व्यक्ति कह रहा था छुरी सही है, उसको इतना गुस्सा आया कि सामने वाले आदमी को उसने उठाया और नदी में फेंक दिया। और वो व्यक्ति तैरना नहीं जानता था, जो पानी में गिर गया और डूब रहा था। डूबते डूबते उसको पता था कि जान निकलने वाली है, परंतु अंततः जैसे उसका शरीर पानी में जा रहा था, पानी में से हाथ ऊपर उठा के वो कह रहा था ऐसे ऐसे, अर्थात कैंची 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 ही सही है, कैंची ही सही है। इस तरह के वाद से क्या मतलब है? तो इसमें ज्यादा गर्मी होती है, प्रकाश नहीं होता है, ज्ञान निकलता नहीं है, कोई निर्णयात्मक सत्य का प्राकट्य नहीं होता है ऐसे तर्क से, केवल समय की बर्बादी होती है। और चौथा जो है चौथे चर्चा की तर्क के या चर्चा की चौथा स्तर है वितंडा। वितंडा में भी ऐसे ही होता है कि दोनों व्यक्ति एक दूसरे को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, और जो व्यक्ति दूसरे को गलत साबित करने की कोशिश करता है, भले स्वयं उसके कोई बात नहीं हो सामने रखने के लिए, उसका कोई तथ्य नहीं हो, कोई विचारधारा न हो, फिर भी उद्देश्य एक ही होता है, जो भी सामने वाला बोल रहा है उसको काटो, भले हम उसकी बात को समझें न समझें। यदि वो सही भी कह रहा हो तो क्योंकि वो कह रहा है इसलिए हमें उसकी बात काटनी चाहिए। ऐसे भी कभी आपने अनुभव किया है? होता है कभी कभी कि सामने वाला जो भी कहे, सही कहे गलत कहे, क्योंकि वो कह रहा है और उसके ऊपर हमें गुस्सा है, उसकी बात काटनी ही काटनी है। तो इसको कहते हैं वितंडा। तो यहां प्रभुपाद जी कहते हैं प्रतिद्वंदी को हराने का प्रयास मात्र वितंडा है, और कोई उद्देश्य मन में नहीं है। तो अभी ये चार प्रकार की चर्चाएं हैं। कौन से हैं ये चार प्रकार की चर्चाएं? संवाद, वाद, जल्प, वितंडा। तो हमें कौन सा चाहिए? संवाद और फिर वाद। यदि वो वाद ऐसे सिद्धांत को सामने रखे जो कि सबके कल्याण के लिए है, सबके भलाई के लिए है और जो शास्त्रोक्त है, जो शास्त्रों पर आधारित है। श्रील प्रभुपाद जी एक न्याय सूत्र के बारे में कहते थे, इसकी पुष्टि करने के लिए कि कैसे कभी कभी थोड़े ऐसे तार्किक होते हैं, तार्किक लोग जो तर्क करना पसंद करते हैं, तर्कशास्त्री लोग होते हैं जो फिजूल की चर्चाएं करते हैं और तर्क करते हैं, कभी कभी कोई मायने नहीं रखते ऐसे चर्च को, चर्चाएं कोई अर्थ नहीं, कोई निष्कर्ष नहीं निकलने वाला या कोई सत्य की स्थापना नहीं हो सकती, फिर भी बस बहस करते रहेंगे। तो इसके बारे में उन्होंने एक न्याय सूत्र के बारे में बताया जिसको कहते हैं काकतालीय न्याय। काक अर्थात कौवा, ताल ताल मतलब ताड़ वृक्ष, हिंदी मराठी में ताड़ कहते हैं, कन्नड़ में क्या कहते हैं? ताड़, ताड़ गोला होता है, ताड़ वृक्ष को क्या कहते हैं? ताल, संस्कृत में ताल कहते हैं और हिंदी में ताड़ कहते हैं, आप जानते हैं ना ताड़ गोला। तो हुआ ये कि एक बार एक कौवा एक ताल वृक्ष के या ताड़ वृक्ष के शाखा पे जाके बैठा, उड़ के आया बैठा। ठीक उसी समय उसी ताड़ वृक्ष से एक ताड़ फल गिर पड़ा। तो थोड़े पंडित वहां पास में खड़े थे, उन्होंने यह दृश्य देखा तो आपस में बहस करने लगे। एक ने कहा कि देखो ये ताड़ वृक्ष के गिरने का कारण क्या है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो एक ने कहा कि ये कौवा आके बैठा उस शाखा के ऊपर और उसने हिलाया उस शाखा को, तो हिलाने की वजह से वो फल नीचे गिर पड़ा। तो दूसरे ने कहा नहीं नहीं, कौवा इस फल के गिरने का कारण नहीं है, ये फल पहले से पका हुआ था और गिरने का समय आ गया था और ऐसे हुआ दैव से कि वो कौवा उसी क्षण आके वहां बैठ गया, इसलिए कौवा उस फल के गिरने का कारण नहीं है, उसका समय आ गया था। इस तरह से पंडित जितने भी वहां उपस्थित थे अपने अपने मत रखने लगे ये चर्चा करने के लिए कि वो फल गिरा कैसे। इसको काकतालीय न्याय कहते हैं, व्यर्थ की चर्चा। ये जो काक वहां पर बैठा तो ये फल गिरा, तो फल क्यों गिरा, कैसे गिरा। अब वास्तव में ये काकतालीय न्याय जो है साधारण प्रयोग में इसका और एक अर्थ होता है कि जब अकस्मात कोई कारण कार्य हो जाता है और संयोग से कुछ हो जाता है तो हम दो कार्यों में या दो घटनाओं में कोई संबंध देखते हैं जबकि वास्तव में कोई संबंध नहीं है। कोई चीज अकस्मात हो जाती है फिर भी हम कहते हैं कि इसके कारण यह हो गया, वास्तव में दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं फिर भी कोई उनमें संबंध हम देखते हैं। तो साधारण प्रयोग में काकतालीय न्याय का अर्थ ऐसे बतलाया जाता है, जैसे आप जा रहे हैं रास्ते पे, अचानक आपको खजाना मिल गया, कोई बहुत सोना चांदी कुछ मिल गया सड़क पे, तो काकतालीय न्याय से मिल गया आपको, अभी हो गया, अभी क्यों हो गया, क्या जिसने रखा था उसे पता था कि आप वहां जाने वाले हैं, आपका वो शुभ चिंतक था इसलिए आपके रास्ते में उसने रख दिया। कई महीनों पहले आपको हमने यहाँ एक कहानी बताई थी कि दो व्यक्ति थे जो राजा के पास आते थे, एक जब वो राजा से कोई दान लेता था तो राजा का गुणगान करता था कि राजा कितने महान हैं, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति आता था राजा से कुछ भेंट लेता था, परंतु राजा का गुणगान नहीं करता था, कहता था भगवान कितने महान हैं। तो राजा चिढ़ गए कि मैं इतने अच्छी चीजें दे रहा हूं इन दोनों को, ये एक आदमी तो श्रेय मुझे दे रहा है कि मैंने ही दिया है, परंतु दूसरा आदमी मुझे श्रेय नहीं देता है, केवल कहता है भगवान ने दिया। तो कह रहा, तो राजा ने उससे कहा कि भाई मैं दे रहा हूं ना तुम्हें, भगवान थोड़ी दे रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, भगवान ही दे रहे हैं। तो राजा ने सोचा अभी को कुछ करना चाहिए, इस व्यक्ति को ऐसे ज्ञान होना चाहिए कि देने वाला मैं हूं। तो एक बार उन्होंने दोनों व्यक्तियों को भेजा, इस सारी कहानी नहीं बताऊंगा समय के अभाव के कारण। तो खैर, जो व्यक्ति राजा को श्रेय देता था उससे पहले कहा आप इस रास्ते से जाना, जो बहुत राजमार्ग जैसा रास्ता था और वहां खाली रखा गया था रास्ते को, और वो आदमी गया और दूसरे आदमी से कहा जो भगवान को श्रेय देता था कि आप बाद में जाना इनके। तो राजा ने जानबूझकर उस रास्ते में खुले जगह में एक बटुआ रखा था जिसमें बहुत धन था। तो पहला आदमी गया, उसने सोचा राजा ने मुझे यहाँ क्यों भेजा, और ऐसे खुली जगह राजमार्ग है तो शायद दिखाने के लिए कि आंख बंद करके भी हम यहाँ से चल सकते हैं। तो वो आदमी आंख बंद करके चलते गया और खजाना नहीं देखा, बटुआ नहीं देखा। दूसरा आदमी गया, उसने जाके बटुआ देखा, बटुआ उठा लिया। जब दोनों राजा के पास गए तो राजा ने दोनों से पूछा आपको क्या मिला, तो पहले आदमी ने कहा कुछ नहीं मिला, दूसरे आदमी ने कहा ये हमको मिल गया। तो कैसे, देखो भगवान ने हमारे लिए क्या किया, हालांकि वो राजा ने रखा था परंतु श्रेय भगवान को जाता है क्योंकि ये उसको अकस्मात मिल गया। इसलिए एक कहावत भी है, जैसे सुभाषित जो कहते हैं ना, काकतालीयवत् प्राप्तं दृष्ट्वापि निधिम् अग्रतः न स्वयं दैवमादत्ते पुरुषार्थम् अपेक्षते। काकतालीयवत् प्राप्तं, जो प्राप्त हुआ है काकतालीय न्याय के अनुसार, अर्थात किस्मत भाग्य के अनुसार जो हुआ है, जिसके पीछे क्या कारण है हम समझ नहीं सकते, दैव योग से हो गया। दृष्ट्वा अपि निधिम अग्रतः, एक आदमी जा रहा है सड़क पे और दृष्ट्वा वो देखता है निधिम, कोई धन पड़ा है सामने, तो फिर क्या होता है, न स्वयं दैवम आदत्ते, उसका भाग्य उसे स्वयं उसके हाथ में जाके ये धन नहीं देगा, क्या करना पड़ेगा उसे, पुरुषार्थम अपेक्षते, उसे श्रम करना होगा, उसे कम से कम उस धन को उठाना पड़ेगा हाथ से, उसको कम से कम अपने आंखों को खुला रखना पड़ेगा। पहले व्यक्ति ने आंख भी खुले नहीं रखे, आंख बंद करके वो चलता रहा, इसलिए उसे धन नहीं मिला। इस दूसरे आदमी ने आंखों को खुला रखा, जब धन को देखा तो झुक के हाथ आगे करके उसको उठाया, फिर उसको धन मिला। तो ये एक सुभाषित है जिससे कहते हैं कि काकतालीय न्याय से यदि अकस्मात दैव योग से कुछ चीज प्राप्ति हो जाता है, फिर भी कुछ परिश्रम करना पड़ता है उसे स्वीकार करने के लिए। तो ये एक साधारण प्रयोग है, परंतु कभी कभी इस काकतालीय न्याय का प्रयोग इस तरह से किया जाता है कि जब कोई घटना होती है तो उसके पीछे इतना विश्लेषण करना, संशोधन करना, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि अनेकों बार जो ज्ञानी लोग होते हैं, तर्कशास्त्री होते हैं, आध्यात्मिक विषयों के बारे में भी बहुत ऐसी चर्चाएं करते हैं, प्रभुपाद कहने लगे क्या लाभ है इसका, ऐसे तर्क करने से कोई लाभ नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें महाजनों से सीखना चाहिए संवाद। तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना नसाव ऋषिर यस्य मतम न भिन्नम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायम महाजनो येन गतः सपन्था। तर्क अप्रतिष्ठ है। केवल तर्क से सत्य की स्थापना नहीं हो सकती, स्पष्टीकरण नहीं हो सकता है सत्य के संदर्भ में केवल तर्क करने से। श्रुतयो विभिन्न, और नहीं सत्य की स्थापना हो सकती है तरह तरह के ग्रंथों को पढ़ के लिख के। न असाव ऋषि यस्य मतम न भिन्नम, क्योंकि तरह तरह के बुद्धिजीव होते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी लोग होते हैं, वो अपने अपने मत को यहां वहां प्रस्तुत करते रहते हैं, कोई लिखते रहते हैं, कोई भाषण देते हैं, कुछ कहते हैं, सबके अपने अलग अलग मत होते हैं, और एक व्यक्ति दूसरे के मत का खंडन करने का प्रयत्न करता है, दूसरा तीसरे का, तीसरा चौथे का, इस तरह से एक दूसरे के मत के खंडन करने के लिए वो लोग व्यस्त रहते हैं। तो सत्य की स्थापना होगी कैसे, कैसे पता चलेगा हमें कि सत्य क्या है और क्या नहीं है। महाजनो ये न गता सपंथा, जो महाजन हैं, जो बड़े संत हैं, बड़े आचार्य हैं, बड़े भक्त हैं भगवान कृष्ण के, ऐसे महाजनों के पद चिन्हों में हमें चलना चाहिए, क्योंकि धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायम, धर्म के जो गूढ़ तत्व होते हैं वो ऐसे महाजनों के हृदय में निवास करते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसे धार्मिक तत्वों का साक्षात्कार किया हुआ होता है। श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि महाजनो येन गतः स पंथा, महाजनों के पद चिन्हों में चलना, इसका अर्थ है गुरु साधु शास्त्र के अनुसार चलना। तो यदि कोई बात गुरु साधु शास्त्र के अनुसार है तो फिर हम उसे मानते हैं। तो न हमें वितंडा चाहिए, न हमें जल्प चाहिए, और वाद तब हम कर पाएंगे जब हमने संवाद में भाग लिया है। जब हम संवाद में जाके ऐसे गुरु शिष्य परंपरा में, प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में हम ऐसे ज्ञान को स्वीकार करेंगे, तब जाकर फिर हम आगे वाद, सही तरह का वाद कर पाएंगे लोगों से। अनेक लोग आते हैं, आपने भी अनुभव किया होगा, अच्छा आप हरे कृष्ण वाले हैं, अरे ऐसा क्यों है, आप कृष्ण ही क्यों हैं, सही भगवत गीता ही क्यों माननी चाहिए। आप में से कितने भक्त हैं जिनके पास कोई ना कोई व्यक्ति आए होंगे ऐसे कोई प्रश्न करके, ऐसे कोई चुनौती आपको देख के, आप लोग केवल भगवत गीता को क्यों मानते हैं, केवल कृष्ण को क्यों मानते हैं, आपके पास आए हैं ऐसे कोई लोग, आप हरे कृष्ण मंदिर में जाते हैं ऐसे क्यों आप मानते हैं। तो वो आपसे चर्चा करना चाहते हैं, कभी कभी तर्क भी करते हैं। तो यदि ये आपको वितंडा या जल्प, आपको वाद में बदलना है, तो सबसे पहले संवाद होना चाहिए। संवाद के द्वारा जब हम सशक्त हो जाएंगे, हमें सही ज्ञान मिलेगा, तब फिर हम दूसरों को ये बता सकेंगे, उनके जो गलत मत हैं उनका खंडन हम सही तरह से कर पाएंगे। आप तो जानते हैं कि श्री कृष्ण ने वृंदावन में अनेक असुरों का वध किया, और श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने बताया है कि ये सारे असुर अलग अलग अनर्थों के प्रतीक हैं। तो जब श्री कृष्ण बाल रूप में ही थे और पूतना का वध किए हुए थोड़ा समय ही बीत गया था कि और एक असुर आया जिसका नाम था तृणावर्त। वो एक भवंडर के रूप में आया, ऐसे तूफान, आप जानते ना भवंडर क्या होता है, ऐसे घूम 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 के आता है, तो ऐसे भवंडर के रूप में आया और उछाल के श्री कृष्ण को ले गया ऊपर। तो श्री कृष्ण तो बाल रूप में थे और एक छोटे बच्चे की तरह ही वो व्यवहार कर रहे थे, तो वो तो समझ गए, क्योंकि श्री कृष्ण तो सर्वज्ञ हैं, तो समझ गए कि एक असुर है जिसने कि भवंडर का रूप धारण किया है और मुझे उछाल के ऊपर आसमान में ले जा रहा है, मुझे हानि पहुंचाने के हेतु, मुझे मार डालने की इच्छा से ये आया है। तो खेल खेल में श्री कृष्ण उसके साथ ऊपर चले गए आसमान में। भवंडर ऊपर 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 भयंकर भवंडर था। सारे ब्रज में इस भवंडर ने इतनी धूली यहां वहां फैला दी कि किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा था कि क्या है। सब जगह धूल 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 दिखाई दे रही थी। तो श्री कृष्ण को पता चला कि अभी मेरे प्रिय ब्रजवासी गण बहुत चिंतित हो गए हैं। माता यशोदा ने श्री कृष्ण को बाहर आंगन में रखा था। अब जब धूलि के कारण वो श्री कृष्ण को देख नहीं पाए तो वह चिंतित हो गई। तो कहां है श्री कृष्ण, ऐसे जोर जोर से बोल रही थी। तो जब श्री कृष्ण को पता चला कि उनके भक्त इतने चिंतित हो गए हैं उनकी अनुपस्थिति में, तो फिर उन्होंने सोचा कि अभी इस असुर को सबक सिखाना चाहिए और उसका उद्धार भी कर लेना चाहिए। तो श्री कृष्ण ने अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। अभी अपनी इच्छा से श्री कृष्ण अपने वजन को बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। कभी कभी मनुष्यों में ये कहते, काश हम भी ऐसे कर सकते हैं। कभी ऐसे लोग जिनका वजन बहुत ज्यादा है कम नहीं कर सकते, इतना प्रयास करते नहीं होता है। कई भी लोग होते हैं जो इतने दुबले सोते वजन बढ़ जाए, बढ़ता ही नहीं वजन। परंतु श्री कृष्ण जब चाहें जैसा चाहें वो कर सकते हैं। योगेश्वर है, योगियों के ईश्वर हैं। तो उन्होंने अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। और हालांकि ये असुर तृणावर्त इतना शक्तिशाली था, जब श्री कृष्ण का वजन इतना बढ़ गया कि वो सहन नहीं कर पाया, तो फिर वो नीचे धड़ाक से गिर पड़ा। और जब वो गिर पड़ा तो उसकी असली रूप उसने प्रकट कर ली और उसके शरीर का चूर चूर हो गया, हड्डी पसली हो गई, उसकी मृत्यु हो गई। और श्री कृष्ण बड़े आराम से वहां इधर उधर खेल रहे थे, मानो कि कुछ हुआ नहीं। फिर माता यशोदा आई श्री कृष्ण को ढूंढने के लिए और श्री कृष्ण को देखा, वहां कोई हानि नहीं पहुंची थी, ऐसे ही बस बैठा है, हंस रहे थे, खेल रहे थे। तो खैर यह है तृणावर्त वध की लीला। तो श्रील भक्त विनोद ठाकुर कहते हैं कि यह तृणावर्त जो है ये फिजूल के व्यर्थ के तर्क के प्रतीक है। तो हमारे अंदर भी ऐसे तर्क या व्यर्थ के बहस करने की प्रवृत्ति होती है ना। अचानक हमारे सामने कोई व्यक्ति आके हमसे बहस करने लगे तो सबसे पहले हमारा प्रतिकार क्या होगा, हम भी बहस करना शुरू करेंगे उसके साथ। कभी कभी क्या होना चाहिए, चुप बैठना ही अच्छा होता है। आप में से अनेक भक्त गृहस्थ हैं, अपने अपने घर में कभी बहस होते हैं कि नहीं होते हैं, होते हैं ना। तो क्या करना चाहिए, बहस बढ़ाना चाहिए, बहस कम करना चाहिए। कई बार हम पहले भी बता चुके हैं, दोबारा बताएंगे अभी, क्योंकि आप में से कोई नए भी हो सकते हैं। घर में जब बहस होती है तो क्या करना चाहिए, दो चीजें कौन सी हैं, जप और गप। घर में झगड़ा नहीं करो, इसका मतलब ये नहीं कि बाहर जाके झगड़ा करो, बाहर भी नहीं, मंदिर में नहीं, जहां भी। तो हमारे अंदर जैसे अनेक अनर्थ हैं, काम क्रोध लोभ मोह मदमात्सर्य इत्यादि, परंतु ये जो तर्क करने की बहस करने की प्रवृत्ति जो है ना, अन्यों के साथ बहस करते रहना, मेरी बात सही है तुम गलत हो, ये जो हमारी प्रवृत्ति है, इससे हम यदि हम मुक्त होना चाहते हैं और फिजूल की चर्चाएं इधर उधर करना, तो हमें तृणावर्त की वध की कथा हमको पढ़नी चाहिए। फिर जो धीरे धीरे से ये प्रवृत्ति नष्ट हो जाएगी। तो काकतालीय न्याय श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, ये न्याय है जिससे व्यर्थ की चर्चाएं होती हैं, जिससे हमें मुक्त होना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते थे कि जैसे जीव का पतन भौतिक संसार में कैसे हुआ, ये एक बहुत ही एक गुह्य और कठिन बात है समझना। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि क्या लाभ है इसके बारे में इतनी चर्चा और इतना तर्क करने से। जीव का पतन जब भौतिक सृष्टि में हुआ तो जीव कहाँ था पहले? भगवान श्री कृष्ण के लीला में था कि निराकार ब्रह्म में था, वैकुंठ जगत में था, महाविष्णु के साथ में था, कहाँ था वो जीव? तो प्रभुपाद जी कहते हैं भूल जाओ, जहां से भी आया होगा, अभी देखो बात यह है कि जीव यहाँ है, अभी हम हैं यहाँ। तो अभी हमें देखना चाहिए कि कैसे भौतिक जन्म के चक्कर, जन्म मृत्यु के चक्र से हम छूट जाएं। यदि हम समुद्र में डूब रहे हैं और कोई नौका पे सवार होकर व्यक्ति हमें बचाने आता है और हाथ सामने देता है कि चलो हाथ पकड़ो ऊपर आ जाओ, और उस समय हम तर्क करने लगे कि पहले ये बताओ कि मुझे अंदर डाला किसने पानी में, तो व्यक्ति कहेगा ये भूल जाओ कि तुम पानी में गए कैसे, अब उतर आओ ऊपर आ जाओ, तो हाथ पकड़ के वो हमें ऊपर ले लेता है। तो उसी प्रकार से हम अभी इस अंध कुएं में हैं, भौतिक अंधकूपी रूपी संसार में हम पड़े हुए हैं। तो चार वैष्णव संप्रदाय चार रस्सी के समान है इस कुएं के अंदर, हमें इसको पकड़ के ऊपर आना चाहिए। अब यहां से निकले कैसे? हम आ तो गए इस भौतिक जगत में, जन्म मृत्यु के चक्र में अटक तो गए, परंतु अब इससे निकलना कैसे है हमें, इसके लिए संवाद चाहिए। सही गुरु शिष्य परंपरा में आके हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, और जैसे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उस आधार पर हमें जीवन को व्यतीत करने का प्रयास करना चाहिए। अन्य तर्कों में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहां श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, वाद पर्वदतामहम, जितने भी वाद हैं उनमें से मैं कौन सा हूं? वाद, वो वाद जिससे कि शास्त्रों पर आधारित जो निष्कर्ष है वो निकलता है। तो काकतालीय न्याय के शिकार हमें नहीं बनना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न है क्या? प्रश्न ये है कि कभी कभी कोई वाद तर्क चल रहा है उसमें हम चुप भी बैठ जाएं तो हमारा नुकसान भी हो सकता है। हाँ सही है, इसलिए किस तर्क में या किस चर्चा में चुप रहना चाहिए, किस चर्चा में बात करनी चाहिए, किस चर्चा में उस स्थान से ही निकल जाना चाहिए, इनका चयन करना चाहिए हमें। जैसे जब वैष्णवों की निंदा हो रही है तो उस स्थान से निकल जाना चाहिए यदि हम उनका खंडन नहीं कर पाए तो, परंतु जहां पर कोई ऐसी बातें कही जा रही हैं जो भगवान के विरोध में है, भक्तों के विरोध में है, और हमें वहां रह के उस बात का खंडन करने का प्रयास करना चाहिए, और उस यदि नहीं हो पाता है, हमारे पास उतना ज्ञान नहीं है या परिस्थिति कुछ ऐसे नहीं है कि हम कर सकते हैं, तो फिर वहां से चले जाना चाहिए ताकि कहीं उनके कुतर्कों का प्रभाव हमारे चित्त पर न हो। तो हाँ ये सही बात है, कभी कभी कोई ऐसे बातें कहते हैं तो खंडन करना आवश्यक होता है, चुप बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि मौनम सम्मति लक्षणम, कभी मौन रखना भी सहमति का लक्षण है। तो सामने वाला कहे कि भगवान है ही नहीं और हम चुप बैठे आगे, तो फिर इसका मतलब है कि हम भी उसकी बातों से सहमत है, तो हमें उस समय चुप नहीं बैठना चाहिए, उनसे बोलना चाहिए कि नहीं भगवान है, और फिर साबित करना चाहिए कि हम क्यों मानते हैं कि भगवान है। इसलिए संवाद की आवश्यकता है। संवाद में हम सीखते हैं सही सत्य क्या है, और जब कोई कुतर्क करता है तो उसका खंडन कैसे किया जाए। ठीक है, ठीक है। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे।
हरे कृष्ण।